गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
रीडिंग फ्रॉम भगवद गीता एज इट इज चैप्टर 2 Text 39, 40, like that. We just do an overview. Yesterday we finished up with 38. Eshate dhita sankhye buddhir yoge timam shunu buddhya yukto yaya partha karma bandham prahasyasi. Translation and interpreted by Srila Prabhupada. Thus far I have described this knowledge to you through analytical study. Now listen as I explain it in terms of working without fruitive results. O son of Pritha, when you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of works. So, kal ka summarize kijiye, kal humne kya kya discuss kiya? Yes.
Dharm ke baare mein bataya, jaise dharm ko koi palan karta hai, to uske do tarah se usko phal milta hai. Ek adhyatmik मैं प्रकृति अध्यात्म जो मतलब हमारे जो वो होता है उसमें प्रकृति होती है हमारी, और दूसरा उसका जो बाय प्रोडक्ट भौतिक सुख, जैसे भौतिक सुख हमें मिलता है, हम इसमें टेम्पररी जो प्रकृति होती है हमारी वो करते हैं।
तो वो जो बाय प्रोडक्ट है सेकेंडरी प्रोडक्ट भौतिक सुख का मिलना, जो लोग धर्म उस उद्देश्य से करते हैं भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए, उन लोगों को वो प्राप्त होता है स्वर्ग जाना। तो हमें किस उद्देश्य से फिर धर्म का पालन करना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म का पालन किस उद्देश्य से करना चाहिए, उसके आध्यात्मिक प्रगति के लिए या भौतिक सुख के लिए?
आध्यात्मिक
प्रगति के लिए। क्यों भौतिक सुख के लिए करने से क्या समस्या है?
वो टेम्परेरी है, एक ही जन्म के लिए रहेगा, फिर अगले साल तो दोबारा जीरो से स्टार्ट करना,
साइकिल में रहेंगे ना हमेशा,
जन्म जन्म चक्र बना रहेगा, क्योंकि भौतिक सुख मिलना मतलब बंधन, करेक्ट? तो वो तो ऐसे ही है जैसे कि कोई कैदी है, उसको लोहे की जंजीर में बांधा हुआ है, तो वो कहे नहीं मुझे लोहे की जंजीर में नहीं, सोने की जंजीर में बांधो। तो सोने की जंजीर हो कि लोहे की जंजीर हो, उससे बंधन तो एक जैसा ही होता है। तो उसी प्रकार से चाहे स्वर्ग लोक में है चाहे मृत्यु लोक में है, इस भौतिक इस पृथ्वी लोक पर, क्योंकि जन्म मृत्यु का चक्र है इसलिए वो एक जैसा ही है, ज्यादा कोई अंतर नहीं। तो ये हमने कल देखा। तो आध्यात्मिक केवल आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें अपने वर्णाश्रम धर्म अपने धर्म का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, हमने देखा कि उसके फलों जो भी उसके फल मिलते हैं, वो सुख धर्म का पालन करने से सुख मिले या धर्म का अनुसरण करने में कुछ कठिनाई हो, तो उससे विचलित हुए बिना हमें अपना धर्म पालन करना चाहिए, जानते हुए कि इससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो, ये हमारा मोटिवेशन होना चाहिए। मेन पॉइंट था कि सब लोग को कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहिए ना कार्य करने के पीछे। तो जो अज्ञानी जन है जो भक्त नहीं है, उनका मोटिवेशन कहाँ से आता है इस जगत में कार्य करने के लिए? मोटिवेशन कहाँ से आता है?
उनका मोटिवेशन ऐसे आता है, वो ये सोचते हैं कि अगर हम ये काम कर लेंगे और इसका फल बहुत अच्छा होगा, हमको इतना एंजॉय मिलेगा।
यस,
वो एंजॉय को सोच के फिर वो,
करेक्ट करेक्ट। तो वो भौतिक सुख को भोग करना वो उनके लिए मोटिवेशन है। इसलिए हमारे जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो इसी बेस पर मोटिवेट करते हैं, है ना। ऐसा करोगे तो आपको वो मिलेगा, नाम मिलेगा, आपकी ख्याति होगी, पैसा मिलेगा। लेकिन भगवद गीता वैदिक संस्कृति में वो मोटिवेशन तो बहुत निम्न स्तर पर है और वो तो बंधन का कारण है। तो क्या मोटिवेशन है फिर? तो क्या इसका मतलब जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो निठल्ले होते हैं, वो लेजी होते हैं? नहीं, अर्जुन एक्टिव, युद्ध किया उसने, ऐसा नहीं कि वो आलसी था। तो फिर कहां से मोटिवेशन आता है? लोगों को समझ में नहीं आता कि अगर हमारे पास फलों को भोग करने का हम छोड़ देंगे आशा, तो फिर कहां से मोटिवेशन आएगा कार्य करने के लिए? तो कहां से मोटिवेशन आता है, आना चाहिए? एक जो भगवद गीता का स्टूडेंट है उसको मोटिवेशन किस कहां से आना चाहिए? यस, हमारे इस कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे और उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, उससे हमारा मोटिवेशन आता है। ठीक है, ओके। अभी भगवान फिर अच्छा अब इसमें एक बहुत सुंदर एक श्लोक उद्धृत किया है भागवतम से श्री प्रभुपाद ने, देवर्षि भूतात्मन नाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी चराजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत्य कर्तम। इसका अर्थ है जो व्यक्ति पूरी तरह से जिसने अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर दिया है, यानी जो समझ गया है कि इस भौतिक जगत में मेरा उद्देश्य, मैं यहां फंसा हुआ हूं, इस भौतिक जगत में मेरा भी उद्देश्य यही है कि इस भौतिक जगत के जो कार्य हैं मेरे शरीर या अपने शरीर को संभालने के संबंधी, वो मैं इसलिए करूंगा जिससे कि मैं अंततः वापस अपने धाम, अपनी स्वाभाविक स्थिति में भगवत सेवा में संलग्न हो पाऊंगा। जो ये जानता है और इसको जानते हुए भगवान की शरण लेता है, है ना, यानी कि जिसको हम भक्ति कहते हैं, भगवान की शरण लेता है, शरणागति, तो उस व्यक्ति के लिए फिर इस भौतिक जगत में अन्य और कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। समझने की कोशिश कीजिए, जो भी इस भौतिक जगत में व्यक्ति हैं जो भक्त नहीं है, जिन्होंने अपने जिन्होंने शरणागति नहीं ली है भगवान की, जिनको अभी भौतिक जगत में भोग करने की आशा है, हम इस जगत में रखने एंजॉय करेंगे, उनके लिए नितांत जरूरी है कि वो बहुत कड़ाई से जो भगवान ने धर्म दिया है वर्णाश्रम धर्म, उसका पालन करें, उसके माध्यम से अपने भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करें, यानी अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करना, यज्ञ इत्यादि संपन्न करना, ये सब कार्य करें। तो मुख्य रूप से ये जो धार्मिक कृत्य होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, नित्य धर्म, नैमित्तिक धर्म और काम्य धर्म या कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। नित्य कर्म मतलब जो शास्त्रों में हमारे लिए प्रतिदिन कर्तव्य बताए गए हैं उसको नित्य कर्म कहते हैं, धार्मिक कृत्य, विशेष रूप से जो देवी देवताओं के माध्यम से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जो यज्ञ नित्य रूप से किए आते हैं, प्रतिदिन करने चाहिए, उनको नित्य कर्म कहते हैं। तो उसके अंतर्गत अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग कर्तव्य होते हैं, नित्य कर्तव्य, जैसे मुख्य रूप से ब्राह्मण जो स्वभाव से ब्राह्मण हैं तो उनके लिए त्रिकाल संध्या, संध्या वंदनम होता है, इस प्रकार के बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं, प्रतिदिन अग्निहोत्र इत्यादि, यज्ञ इत्यादि संपन्न करना, वो नित्य कर्म कहलाते हैं। फिर दूसरे होते हैं नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म मतलब जो कभी कभी संपन्न करने होते हैं, जैसे श्राद्ध प्रतिदिन नहीं होता है, वो कभी कभी साल में कभी होता है, नित्य नैमित्तिक कर्म कराते हैं। और काम्य कर्म मतलब जो किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए कोई पर्टिकुलर धार्मिक कृत्य किया जाए उसको काम्य कर्म कहते हैं। जैसे किसी की इच्छा है दंपत्ति की हमें पुत्र प्राप्त हो, पुत्र की इच्छा है, तो वो एक विशिष्ट शास्त्र में बताया गया है कि जिसकी ऐसी इच्छा है वो यही यज्ञ संपन्न करे, पुत्रेष्ठ यज्ञ करे, जिससे उसको ये प्राप्त होगा, इसको काम्य कर्म कहते हैं। तो जो लोग इस भौतिक जगत में अभी भी इसी चेतना में हैं कि हम इस भौतिक जगत में हैं भोग करने के लिए, जो भी शरणागत नहीं है भगवान को, इनकी समझ नहीं आई है कि वास्तव में हम भोक्ता नहीं हैं, हम भगवान के दास हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो ये सारे जो धार्मिक कृत्य हैं उनको पालन करें। नहीं तो इनको पालन नहीं करके यदि कोई अपने मनमाने ढंग से इस भौतिक जगत का भोग करना चाहता है, देव देवताओं का परवाह किए बिना, कोई अनुष्ठान किए बिना, बस ऐसे एंजॉय करना है, तो वो पाप करता है, फिर पाप करता है। तो उससे क्या होता है, अधोगति की तरफ जाता है, मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, पशु योनि में जाएगा। तो इसलिए जो सामान्य लोग हैं, जो लोग भी भक्त नहीं हैं, जो लोग भी भगवान को शरणागत नहीं हुए हैं, उन सब के लिए ये निदान है कि सबको बहुत कड़ाई से धर्म का पालन करना चाहिए, इस उद्देश्य से पुण्य कमाने के लिए और पाप से बचने के लिए, दो उद्देश्य से। उनको तो चाहिए भोग करना है, तो भोग करने के लिए पुण्य करना होगा और पाप से बचना होगा, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो नरक की तरफ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो भक्त हुए, जिन्होंने अपना जीवन भगवान को समर्पित किया है, जो शरणागत हुए भगवान को समर्पित किया जीवन, मतलब चाहे वो गृहस्थ भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल ब्रह्मचारी सन्यासी ही भगवान को समर्पित होते हैं, कोई भी वर्ण का हो सकता है, कोई भी आश्रम में, दैट डजंट मैटर। लेकिन जिनकी ये समझ बिल्कुल क्लियर है कि हम भगवान के दास हैं, हम भोक्ता नहीं हैं, हमारा एकमात्र कर्तव्य भगवान की सेवा करना है, और इस भौतिक जगत में अभी हम हैं, इस भौतिक जगत पे जो भी हमारे साथ में जो भी हमारे पास है वो सबको हमें उपयोग करना है भगवान की सेवा के लिए, और शरीर भी भगवान की सेवा के लिए, शरीर का निर्वाह वो इसी समझ से करते हैं, तो उनको हम भक्त कहते हैं, है ना, जो है वो शुद्ध भक्ति के मार्ग में है। तो ऐसे जो भक्त हैं, अगर वो कोई कारणवश भगवान की सेवा में संलग्न होने के कारण, कोई कारणवश यदि अपने सामान्य जो धर्म है उसका पालन अगर वो नहीं भी करें तो उनको उससे पाप नहीं लगता है, क्योंकि अभी वो इस भौतिक जगत में भोग करने की इच्छा को त्याग दिए हैं, इसलिए उनके लिए वो पाप और पुण्य की परिधि से ऊपर चले गए। जब तक किसी व्यक्ति की इस भौतिक जगत में भोगने की आशा होती है तब तक उसको पाप और पुण्य की परिधि में वो होता है, लेकिन जब किसी की इच्छा ही नहीं है इस भौतिक जगत को भोग करने की और भगवान की सेवा करने की ही इच्छा है, तो फिर उसको पाप और पुण्य इस प्रकार से प्रभावित उसको नहीं करते हैं। यानी जो सामान्य रूप से जो उसको कर्म सामान्य रूप से जो शास्त्र में बताया गया है कि ये धर्म, ये वर्णाश्रम के नियम पालन करने ये करना है, तो सामान्य रूप से भक्त भी वो सब वर्णाश्रम के नियम पालन करते हैं। किस उद्देश्य से करते हैं? सुख भोगने के उद्देश्य से नहीं करते हैं, इस उद्देश्य से करते हैं कि वो सब धार्मिक कृत्य जो भी वर्णाश्रम के नियम है उसको पालन करने से एक इस संसार में एक स्वस्थ तरीके से वो रह सकते हैं, अनुकूल वातावरण उनको प्राप्त होगा, सोसाइटी प्रॉपरली चलेगी, जिससे कि वो भक्ति संपन्न करने में आसानी होगी, इस उद्देश्य से वो अपने धार्मिक कृत्यों को पालन करते हैं। जो अज्ञानी जन हैं, जो इस भौतिक जगत में भोग करना चाहते हैं, वो किस उद्देश्य से धर्म का पालन करते हैं? पाप से बचने के लिए और पुण्य कमाने के लिए, जिससे कि उनको भौतिक सुख मिले, भौतिक दुख नहीं मिले, समझ में आया? लेकिन जो भक्तगण हैं वो वर्णाश्रम नियमों का पालन किस उद्देश्य से करते हैं, जिससे कि उनका शरीर और समाज स्वस्थ रह सके, और स्वस्थ समाज और शरीर के द्वारा वो आसानी से अनुकूल वातावरण में भगवान की सेवा कर पाएंगे, इस उद्देश्य से वो धर्म का अनुष्ठान करते हैं। क्योंकि धर्म का अनुष्ठान करने से ये समाज शरीर मेंटेन आसानी से हो सकता है। जैसे कोई ये युवा है, अभी उसकी वो समझ रहा है कि मेरा जीवन, हम भगवान के दास हैं, लेकिन हृदय के अंदर भी काम वासनाएं हैं, तो तुरंत तो वो खत्म नहीं होती हैं, समय लगता है। तो अगर किसी के अंदर इस प्रकार से काम वासनाएं हैं तो उसके लिए प्रावधान है कि ठीक है, विवाह करो और गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत भगवान की भक्ति कंटिन्यू करो। तो अभी ये जो विवाह करना हुआ वो किस उद्देश्य से करेगा कि ये जो मेरी भौतिक आसक्ति है उसको मैं तुरंत नहीं छोड़ पा रहा हूं, इसलिए उसको भगवान के आदेश के अनुसार विवाह यज्ञ के अंतर्गत, दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत उसको भगवान की सेवा में नियोजित करूंगा, जिससे कि मैं भक्ति करने में मेरा विघ्न नहीं आएगा। क्योंकि अगर मन में काम वासनाएं हैं तो वो हमारे को भक्ति सेवा करने में भी डिस्टर्ब करेंगे ना, करेक्ट। तो इसलिए उसको वर्णाश्रम के अंतर्गत, नियम के अंतर्गत उसको उन काम वासनाओं को भगवान की सेवा में नियोजित करने के लिए ये विवाह संस्कार है, इस प्रकार से। और जिस व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं इस प्रकार से नहीं है, कम है बहुत, उसका हृदय जो है वो ये इस प्रकार से उद्वलित नहीं होता है, तो वो विवाह के बिना रह सकता है, संन्यास ले सकता है, सन्यासी रह सकता है। तो इस प्रकार से एक भक्त भी, वो भी सामान्य रूप से वर्णाश्रम नियम का पालन करता है इस उद्देश्य से, जिससे कि उसका शरीर स्वस्थ बना रहे, क्योंकि शरीर को स्वस्थ बनाना, समाज को स्वस्थ बनाना, ये उसका स्वाभाविक प्रतिफल है वर्णाश्रम को पालन करने का। लेकिन वो काम में कर्म नहीं करता है, भौतिक इच्छा को प्राप्त करने के लिए कोई कार्य नहीं करता है, नित्य और नैमित्तिक कर्म करता है, काम में कर्म नहीं करता, क्योंकि काम में कर्म तो वही करेगा जिसको भोग करने की इच्छा है। और नित्य नैमित्तिक कर्म भी वो इसी उद्देश्य से नहीं करता है कि मुझे इससे पुण्य मिलेगा फिर मैं सुखी रह पाऊंगा, नहीं, वो तो इसी उद्देश्य से करता है कि उससे मेरा शरीर और समाज हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, जिससे कि भगवान की भक्ति में अनुकूल वातावरण मिलेगा। इसलिए ऐसे भक्त के लिए कहा गया है कि ऐसा भक्त जो है वो वर्णाश्रम के जो नियम है उसको वो सामान्य रूप से हालांकि पालन कर रहा है, लेकिन अगर किसी अवस्था में उसको वो पालन अगर नहीं भी कर पाए, भगवान की सेवा में वो डायरेक्ट सेवा में संलग्न होने की वजह से कोई भौतिक कार्य नहीं भी कर पाए अपना कर्तव्य, तो भी उसको उससे पाप नहीं लगता है। जबकि जो व्यक्ति भक्त नहीं है, यदि वो किसी भी कारण से यदि वो अपने सामान्य जो धर्म है उसको नहीं करे तो उसको उससे पाप लगता है, ये अंतर है। और फिर जो भक्त विशेष रूप से बहुत ही उत्तम स्थिति में चले गए हैं, जिनको भगवान से अनुराग उत्पन्न हो गया है, जो भौतिक शरीर पर भी आश्रित ही नहीं है, भौतिक शरीर की अवस्था उनकी भक्ति को प्रभावित नहीं करती है, ऐसे उच्च कोटि के भक्तों के लिए तो वर्णाश्रम के नियम जो हैं उनको बाधित नहीं करते हैं। वो उसको पालन करें कि नहीं करें, उनकी भक्ति पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कब, जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं भक्त कि वो शरीर पर आश्रित नहीं है, खाना मिले कि नहीं मिले उससे उनकी भक्ति प्रभावित नहीं होती है, उनको सोने की जरूरत भी नहीं होती है, इस स्तर पे वो चले जाते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन सबसे ऊपर चले गए हैं, जब ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं तब उनको वर्णाश्रम के नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक हम उस स्थिति में नहीं है तब तक भक्तों को भी, जो भगवान को शरणागत है, उनको भी वर्णाश्रम नियम पालन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी वो शरीर पर आश्रित हैं, उनको एक स्वस्थ शरीर चाहिए, उनको एक स्वस्थ समाज चाहिए, इसलिए स्वस्थ समाज स्वस्थ शरीर को रखने के लिए उनको वर्णाश्रम पालन करना होता है। लेकिन वो एक सामान्य अज्ञानी व्यक्ति की तरह से पाप और पुण्य की परिधि में नहीं होते हैं, इस तरह से समझ में समझ में आए बात। ओके, तो फिर भगवान आगे कहते हैं कि अभी तक मैंने तुम्हें इस प्रकार से आत्मा और शरीर में भेद बताया, अभी मैं कैसे ये समझ के आधार पर कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम हमारा इस भौतिक जगत में सुख शरीर के द्वारा सुख भोगना ये मूर्खता है, क्योंकि हम शरीर ही नहीं है, शरीर का सुख हमारा सुख है ही नहीं, तो ये समझते हुए अभी हमें कैसे कार्य करना चाहिए इस जगत में, वो डिटेल में भगवान बता रहे हैं। उसका इंट्रोडक्शन भगवान ने पिछले श्लोक में दिया कि सुख दुख में संभाव रखते हुए केवल कर्तव्य पालन करने के लिए कर्तव्य करो, जिससे आध्यात्मिक प्रगति होगी इसलिए करो, इस उद्देश्य से करो। इसी बात को भगवान और विस्तार से आगे हमें बताएंगे, ठीक है। फिर भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से कार्य करने में, जो केवल अपने भौतिक जगत के कार्य, शरीर समाज संबंधी कार्य केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है, हाँ, कि शरीर मेंटेन करना है उसको, क्योंकि भगवान की सेवा करनी है, उस उद्देश्य से करता है, भोग करने के उद्देश्य से नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायु ने विद्यते स्वर्ण से धर्म से त्रायते महत्व भयात। इस प्रकार से जो भौतिक जगत का सभी कार्य करता है तो वो एक तरीके से भक्ति के कार्य हो जाते हैं, भगवान को पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, वो कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए वो अंततः नियोजित हो जाते हैं, इसलिए ये सभी भक्ति कार्य कहलाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के हमारे स्वधर्म होते हैं, एक शरीर संबंधी और एक आत्मा संबंधी, तो दोनों मिलाकर के वो भक्ति हैं। एक जो है वो प्राथमिक है, जो आत्मा संबंधी है वो नित्य है, हमेशा चलेंगे, वो मुक्तावस्था में भी चलेंगे, और एक भक्त के जीवन में जो भौतिक शरीर संबंधी जो उसके कार्य हैं वो इस समय के लिए है, इस जीवन के लिए है, इस शरीर संबंधी है, इस जब तक ये शरीर तब तक वो है, ठीक है। लेकिन दोनों ही वो कार्य क्योंकि भगवान को समर्पित है, भगवान की संतुष्टि के लिए ही है, इसलिए वो भक्ति कहलाते हैं, वो भक्ति की परिधि में आते हैं, ठीक है। तो जो भक्त का जीवन ऐसे होता है, भक्ति में संलग्न होता है, उसको जो भी वो आध्यात्मिक प्रगति करता है उसकी वजह से वो कभी खत्म नहीं होती। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, और ऐसा कोई भी भक्ति में जीवन के अंदर जो भी वो कार्य करता है उससे उसको अगर वो पूरा नहीं कर पाए तो उससे उसको पाप भी नहीं लगता है। जो पाप और पुण्य की परिधि में जो लोग हैं उनको जो नियत कर्म करने हैं अगर वो उसको पूरा नहीं कर पाए तो उनको पाप लगता है, लेकिन भक्ति में जीवन के अंदर जो व्यक्ति आता है उसको अगर उसकी मृत्यु हो गई, वो कार्य पूरा नहीं कर पाया तो उसको पाप नहीं लगता है, ये अंतर है। और जितनी भी वो आध्यात्मिक प्रगति करता है वो कभी भी नाश नहीं होती है, जबकि जो अज्ञानी व्यक्ति जो भी इस भौतिक जगत के अंदर जो भी कार्य करते हैं वो नाश हो जाते हैं उसके, क्योंकि वो भौतिक स्तर पे हैं इसलिए नाश हो जाते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक जो भक्त है क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर पे है इसलिए वो आध्यात्मिक प्रगति को नाश नहीं होती है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति ने इस जीवन में इस प्रकार से अपने कार्य को भगवान को समर्पित किया, हरे कृष्ण मंत्र जपा, नवविधा भक्ति की, तो जो भी उसकी आध्यात्मिक प्रगति होगी अगले जीवन में उसको वहीं से शुरू करना होगा जहां से उसने जितना पहले जीवन में एडवांसमेंट कर लिया, उसकी चेतना उतनी बनी रहेगी, उसको वो एडवांटेज मिलेगा नेक्स्ट लाइफ में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति इस जीवन में भक्ति करता है, थोड़ी सी भी भक्ति करता है, तो अगला जीवन कम से कम उसका मनुष्य योनि मिलना पक्का हो जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति उसने जो थोड़ी बहुत की है उसको वहीं से कंटिन्यू करना है, तो कंटिन्यू करने के लिए मनुष्य जीवन चाहिए, पशु योनि में तो भक्ति होती नहीं है। तो इसीलिए अगर कोई थोड़ी सी भी भक्ति संपन्न करता है तो कम से कम उसको पशु योनि में तो नहीं जाना पड़ेगा, उसको निश्चित रूप से एक मनुष्य योनि मिलेगी, और मनुष्य में भी ऐसी योनि जिसमें वो और आसानी से भक्ति संपन्न कर सके। तो ये भक्त का, भक्ति के जीवन का एक मुख्य लाभ है कि हम हमेशा के लिए हम जो है नीचे गिरने से बच जाते हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति भगवान को समर्पित नहीं है उसका लाइफ बड़ा रिस्की है, वो कहीं भी थोड़ा बहुत पाप हो गया तो पशुयोनि उसको प्राप्त हो सकती है। जैसे कि नृग महाराज थे, बहुत पुण्य करते थे, लेकिन गलती से एक पाप हो गया उनसे, गलती से, तो उस पाप की वजह से उनको छिपकली का योनि भुगतना पड़ा। पुण्य करने से उनको स्वर्ग जाना था, लेकिन स्वर्ग जाने से पहले ये पाप भुगतना पड़ा। लेकिन भक्त के जीवन में इस प्रकार से नहीं होता है, जाने अनजाने में भी यदि कुछ हो जाए तो उसको उससे पाप नहीं लगता है। और जो लोग ना तो भक्त हैं ना तो धर्म का पालन करते हैं, मनमाने ढंग से जीते हैं इंद्रिय भोग के लिए, उनको तो नरक ही मिलता, उनका तो कोई चांस नहीं, उनको दोबारा मनुष्योनि नहीं मिली क्योंकि उन्होंने मिसयूज किया है मनुष्योनि को, ये भागवत में बताया गया। Okay. फिर आगे बताया है कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है गुरु नंदना, जो इस प्रकार से भक्त होते हैं उनकी बुद्धि एक निष्ठ होती है, बाकी लोग जो हैं उनकी बुद्धि हमेशा काम वासनाओं से विभाजित रहती है, कभी ये इच्छा करते हैं कभी वो इच्छा करते हैं कभी वो इच्छा करते हैं, उनके लक्ष्य बदलते रहते हैं, गोल्स बदलते रहते हैं, है ना। बच्चा होता है उसका लक्ष्य क्या होता है, खिलौने से खेलना, ठीक है। युवक बनता है तो उसका लक्ष्य क्या होता है, युवती के साथ संबंध स्थापित करना, ठीक है। सामान्यतः हर युवक उसके माइंड में हमेशा युवती के ही विचार चलते रहते हैं और युवती के मन में युवक के विचार चलते रहते हैं, फिर वो आगे चलता है विवाह हो जाता है तो फिर उसका लक्ष्य आता है परिवार पालन पोषण करना, पत्नी और बच्चों का को मेंटेन करना, फिर और आगे जाता है, अभी बच्चे सब बड़े हो गए सभी हो गए, अभी उसका लक्ष्य आता है समाज में एक परोपकारी करना, कुछ समाज का एक समाज में एक मान सम्मान हो, फिर वो उसका उद्देश्य बन जाता है। ऐसे करके व्यक्ति जो है जो भक्त नहीं है एक चीज करता है थोड़े समय में आज उसको उससे संतुष्टि आती है, बोर हो गए, फिर अगला कुछ उद्देश्य बनाता है, फिर थोड़ा वो मिलता है फिर उसमें लगता है ये भी बेकार है, फिर और कुछ नया उद्देश्य बनाता है, क्योंकि ये सब जो चीज जो जिसके लिए प्रयास कर रहा है वो सब तो क्षणिक है और वो सब कभी भी आत्मा को संतुष्ट करती नहीं है, तो कुछ समय के लिए लुभावन लगती है। हम भी जब छोटे थे सब खेलने में बहुत रुचि थी ना, सारा दिन खेलने को मन करता था ना, छोटे बच्चे जो हमेशा सारा दिन खेलते रहेंगे बालक, लेकिन अभी हम लोगों को नहीं खेल पाएंगे पूरा दिन क्योंकि मन बदल गया, शरीर बदल गया, ऊब गए उससे, अभी दूसरा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। ऐसे ही हमारे जीवन जैसे जैसे हम शरीर बदलता है मन बदलता है वैसे वैसे और हमारे अलग अलग रुचि बदलती जाती है, लेकिन भक्त के जीवन में हमेशा से वो एक निष्ठ उसकी होती है भगवान की सेवा करना है, धीरे वो साक्षात्कार करता है कि भगवान की सेवा करने में परम संतुष्टि प्राप्त होती है, इसलिए वो उसके ऊपर और कुछ नहीं है और वो कभी बोर नहीं होता है क्योंकि भगवान की सेवा जीव का नित्य धर्म है, इसलिए वो आध्यात्मिक सुख उससे मिलता है, आध्यात्मिक सुख कभी खत्म नहीं होता है, वो बढ़ता ही रहता है, इसलिए वहां पहुंचने के बाद परमानेंट सिचुएशन, फिर वो बदलने की जरूरत नहीं पड़ती अपने लक्ष्य को, इस फिक्स्ड अप। तो ये बताया गया व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है गुरु नंदन। तो अभी हम फिर कल से 42nd शुरू करेंगे श्लोक, यहाँ पर समाप्त करते हैं। एनी क्वेश्चन? यस,
जैसे किसी कोई होते हैं जिनको समझ में भी आ जाता है कि हमारा जो मतलब हम भगवान के नित्य दास है और हमें भगवान के सारे कार्य करने मतलब आध्यात्मिक प्रगति होनी चाहिए, फिर भी कुछ भौतिक अटैचमेंट होते हैं काफी, कभी पैसा थोड़ा सा चाहिए, ये करना है थोड़ा वो करना है, तो उसके वजह से अगर यदि कर्म कांड करते हैं तो उससे कुछ पाप लगता है
अगर किसी को क्लियर समझ है कि हम तो भगवान के दास हैं और श्री कृष्ण भगवान हैं, लेकिन भौतिक आसक्तियां हैं, हो सकती है, जरूर नहीं है केवल ये जान लेने पर भौतिक आसक्ति तुरंत खत्म हो जाए, उसके लिए तो साधना करनी पड़ती है, तो उस व्यक्ति को कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। कर्मकांड मतलब जिसमें कि केवल लक्ष्य ही है कि हम बस भौतिक जगत में भोग करना है, वो कर्मकांड करेगा। लेकिन जिसको पता है कि मैं अभी भौतिक जगत में विवश हूँ भोग करने के लिए, क्योंकि मेरी इच्छाएं हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये इच्छाएं से मुझे बाहर निकलना है, है ना, और इसके लिए मैं प्रयास करूंगा, तो ऐसा भक्त जो है वो हमेशा से अंदर से ग्लानी अनुभव कर करता है कि मैं ये भौतिक सुख, मुझे अभी भी मेरे अंदर ये अटैचमेंट है, इच्छाएं हैं, भगवान से प्रार्थना करता रहता है, भगवान इसको निकालिए, भगवान इसको निकालिए, इसको निकालिए, मैं विवश हूँ, ये सब कुछ भौतिक इच्छाएं हैं, मुझे इसको पूरा करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से वो जीवन जीता है, वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कि भगवान ये भौतिक इच्छाएं निकालिए, और विवशता जितनी है कि उतना ही वो भौतिक ये सुख के पीछे भागता है। तो ऐसा भक्त तो धीरे धीरे तुरंत ही शुद्ध हो जाता है जो इतना गंभीर है। लेकिन कोई ऐसा भक्त है जो मिश्रित भक्त है, शुद्ध भक्त नहीं है, उसका प्राथमिक हाँ ठीक है भगवान की भक्ति करनी है, लेकिन मुख्य उद्देश्य है कुछ भगवान की भक्ति करके कुछ भौतिक सुख प्राप्त करना, तो वो शुद्ध भक्त नहीं है, वो तो उसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, वो नहीं समझ रहा है कि मैं केवल भगवान को संतुष्ट करना ही मेरा लक्ष्य है। नहीं, भगवान को सुखी करना प्राइमरी क्या है, मुझे भगवान से कुछ प्राप्त करना है, तो वो शुद्ध भक्त नहीं, वो मिश्रित भक्त है। उसको भी कर्मकांड करने की जरूरत नहीं, उसको भी भौतिक सुख जो चाहिए वो भगवान से ही जाके मांगे, भक्ति संपन्न करे भगवान से कुछ मांगने के लिए, उसको भी कर्मकांड, उसको भी देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं। तो लेकिन जो भक्ति नहीं है, जिसको विश्वास ही नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान है, वो कर्मकांड करे, वो अन्य देवताओं के पास जाए, नहीं तो आवश्यक नहीं, नहीं करना चाहिए, कैसे करेगा। जो जानता है कि श्री कृष्ण सबके सर्वोपरि है, वो क्यों भौतिक इच्छाएं होंगी उसकी, तो भी उसको भगवान से ही मांगना चाहिए, ताकि कहीं और जाना चाहिए, है ना। लेकिन भगवान से भगवान से मांगना चाहिए, लेकिन भक्ति तीव्रता से करनी चाहिए। अगर भगवान से मांगना है तो भक्ति तीव्र भक्ति करते हुए मांगना चाहिए, जैसे ध्रुव महाराज ने बहुत इंटेंस डिवोशन किया अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए।
तो भी आपने बोला था कि काम, किसी के अंदर काम वासना होती है तो फिर उसका विवाह करा देते हैं, फिर वो उसमें, लेकिन अगर उसके अंदर काम वासना है, वो उसका विवाह करा है, तो उससे तो उसकी काम वासना बढ़ेगी, मतलब माया में और ज्यादा घिरेगा, तो इससे वो उसके लिए प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ रही है भक्ति करने में, तो ये सॉल्यूशन कैसे उसका विवाह में?
क्योंकि विवाह जो है ना वो सेक्स के लिए लाइसेंस नहीं है। हम जो सोचते हैं कि विवाह जो है बस वो केवल इस भौतिक जगत को भोगने के लिए है, नो, विवाह संस्कार वो धार्मिक कृत्य करने के लिए है, बहुत रेगुलेटेड लाइफ के लिए है वो भी, है ना। तो यस, उसमें कुछ अलाउंस है, पति पत्नी है तो यस, संतान उत्पत्ति करने के लिए वो यूनाइट होते हैं, बट अंडर फॉलोइंग धर्म, नॉट विम्सिकली, नॉट जस्ट सिंपली फॉर द सेक ऑफ प्लेजर। तो इसलिए वो रेगुलेशन जो है एक दाम्पत्य जीवन के अंदर, उनको अगर एक व्यक्ति जिसके अंदर बहुत अधिक इच्छाएं हैं, बहुत अधिक इच्छाएं ज़्यादा हैं दाम्पत्य जीवन की या पारिवारिक सुख की, तो उसको अगर तुरंत रोक दिया जाए कि नो, तो वो जो अंदर जो इच्छाएं हैं वो उसको परेशान करेंगी। तो इसलिए विवाह यज्ञ है कि वो जो भौतिक इच्छाएं हैं उनको भगवान की सेवा में नियोजित करने का तरीका है, ठीक है। दाम्पत्य जीवन की इच्छा है, ठीक है, उसको आप भगवान की सेवा में लगाइए कि केवल एक अच्छी संतान को इस जगत में लाने के लिए हम अपनी उस काम वासना का उपयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। तो इस तरह से भगवान की सेवा में नियोजित हो गई, और वो भी अंडर रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए वो धीरे धीरे वो हम जैसे जैसे अपने गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे शुद्ध होगा और भक्ति संपन्न करेंगे तो शुद्ध होगा। लेकिन अगर उसको तुरंत अगर रोक दिया जाएगा तो उसके लिए संभव नहीं है करना, तो वो इलिसिट डिजायर्स अवैध रूप से वो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए विवश हो जाएगा, तो उसका तो और पतन होगा फिर। इसलिए वैवाहिक जीवन जो है वो अगर सही प्रकार से नियमों का पालन किया जाए तो वो इच्छाओं को बढ़ाएगा नहीं, धीरे धीरे इच्छाओं को शोधन करेगा। लेकिन आजकल का जो जीवन है मैरिड लाइफ, वो लोग तो कोई नियम पालन नहीं करते हैं, तो वो लोग और अधिक निम्न स्तर पर गिरने के उनके चांसेस हैं। लेकिन वास्तव में जो गृहस्थ आश्रम जी रहा है उसके साथ ऐसा नहीं होगा अगर वो सभी नियमों को पालन करता है तो। एनीथिंग एल्स? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।